संयुक्त राष्ट्र रेडियो के साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सचिन गौड़। 12 नवंबर 2021 के इस अंक में सुनिए, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में यूएन जलवायु सम्मेलन पर टिकी दुनिया की निगाहें। अंतिम चरण की वार्ताओं का दौर निर्धारित समय से आगे बढ़ा। यूएन महासचिव ने कहा, ग्लासगो सम्मेलन में अब तक हुई घोषणाएं उत्साहजनक मगर पर्याप्त नहीं। एक खास बातचीत COP26 सम्मेलन में हिस्सा ले रही भारत की युवा जलवायु कार्यकर्ता हीता लखानी के साथ। डायबिटीज के साथ जीवन गुजार रहे बहुत से लोगों के लिए इंसुलिन है जरूरी मगर उनकी पहुंच से बाहर। और नेपाल की संज्ञा मल्ला को 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला पुलिस अधिकारी का सम्मान। अब समाचार विस्तार से। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में संयुक्त राष्ट्र का 26वां वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP26 ब्रिटेन के समय के अनुसार शुक्रवार शाम को समाप्त होना था, मगर अंतिम चरण की वार्ताओं का दौर अभी जारी है। सभी देश वैश्विक तापमान में विनाशकारी बढ़ोतरी को रोकने और निर्बल देशों की मदद के लिए उपायों पर सहमति बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंध और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली क्षति से प्रभावित देशों की मदद, ये कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर फिलहाल अभी सहमति नहीं बन पाई है। अनेक देशों ने वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखने के लक्ष्य को जीवित रखने का आग्रह किया है। इससे पहले यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को सम्मेलन में एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लासगो में हुई घोषणाएं उत्साहजनक हैं मगर पर्याप्त नहीं है।
The announcements here in Glasgow are encouraging, but they are far from enough. The emissions gap remains a devastating threat. The finance and adaptation gap represent a glaring injustice for the developing world.
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों और वास्तविकता के बीच की खाई एक विनाशकारी खतरा है। वित्तीय संसाधनों और अनुकूलन प्रयासों में कमी विकासशील देशों के साथ एक बड़े अन्याय को प्रदर्शित करती है। उन्होंने आगाह किया कि जलवायु कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय संकल्पों को ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाया जाना होगा। यहां आपको ध्यान दिलाते चलें कि COP26 सम्मेलन में हुई चर्चाओं और विभिन्न गतिविधियों पर यूएन न्यूज की टीम ने विशेष सामग्री जुटाई है। खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। COP26 सम्मेलन में भारत की एक युवा जलवायु कार्यकर्ता हीता लखानी भी हिस्सा ले रही हैं। उनका कहना है कि हाल के वर्षों में जलवायु वार्ताओं में युवाओं की भूमिका बढ़ी है। नई दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने हीता लखानी से COP26 पर ग्लासगो में चल रही गतिविधियों पर विस्तार से बात की।
गीता, आप COP26 जलवायु सम्मेलन में भाग लेने ग्लासगो गई हुई हैं, क्या गहमा गहमी है वहाँ? आप खासतौर पर किस कार्रवाई से जुड़ी हुई हैं?
यहाँ मैं COP26 ग्लासगो में ग्लोबल फोकल पॉइंट हूँ यंगो की। यंगो मैकेनिज्म है युवाओं के लिए, दुनिया भर के युवा जो है 35 साल के अंदर उनके साथ वॉलंटियर में काम करते हैं, भी इंश्योर की यहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन है। हमारे साथ यहाँ आज कम से कम 200 दुनिया भर से युवा आए हैं और यहाँ से हम कोऑर्डिनेट कर रही हूँ उनके साथ, उनके रिप्रेजेंटेशन यूएन में और युवाओं के बीच में।
अब ये सम्मेलन खत्म होने को है, ऐसे में आपका क्या आकलन है, कितना सफल रहा ये सम्मेलन?
अभी इस कॉप में जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ जो पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में बनी थी, पेरिस एग्रीमेंट का रूल बुक नेगोशिएट हो रहा है, उसका फाइनल टेक्स्ट थोड़ा सा बाकी है जो 2018 में काफी कुछ कम्प्लीट हो गया था, और ये कम्प्लीशन होने के बाद भी ये फिर भी टेक्स्ट में है, उसके बाद एक्शन वापस घर जाके ईच कंट्री हैज टू गो एंड डू देयर ओन थिंग।
आपका ये जो सफर है वो 2015 में पेरिस में जलवायु सम्मेलन यानी COP21 में भाग लेने से शुरू हुआ था, तब से अब तक क्या बदलाव नजर आया आपको आकांक्षाओं और प्रतिबद्धताओं में? खासतौर पर
पिछले 3-4 साल में इतना अटेंशन आ गया है, ग्लोबल अटेंशन, मीडिया का भी अटेंशन है, युवाओं का भी अटेंशन है, सारे तरफ से लोग देख रहे हैं कि यहाँ कॉप में हो क्या रहा है, क्या हम ये जो प्रॉमिस जो हमने की थी 2015 में क्या हम वो आज कल तक पूरी कर पाएंगे या नहीं। 2015 में दुनिया भर के गवर्नमेंट्स अलग थे, काफी लीडर्स अलग थे, तो उनके माइंडसेट अलग थे, इस बार काफी माइंडसेट अलग है।
तो युवा जलवायु कार्यकर्ता के रूप में आप भारत में किन किन गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे हैं?
मैं भारत में मेरा अपना खुद का क्लाइमेट एजुकेशन प्रोग्राम है, क्योंकि मैं इतने सालों से जब मैं कॉप्स में आ रही थी मैंने देखा कि इतनी सारी जो बातें होती है यहाँ पे, इतना सारा जो मोमेंटम हम बोलते हैं कि नो बिल्ड ऑन द मोमेंटम, उसके बाद जाकर उसका ट्रांसलेशन कभी लोकल में किसी को इस दुनिया के बाहर किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अलग है, इनका जागरण अलग है, उनकी काम करने की चीज एकदम टेक्सचुअल है। इसीलिए मैं क्लाइमेट एजुकेशन में काम करती हूँ।
ग्लासगो सम्मेलन में हिस्सा ले रही भारत की युवा जलवायु कार्यकर्ता हीता लखानी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यूरोप में पिछले सप्ताह कोविड 19 के लगभग 20 लाख मामलों की खबर मिली और ये संख्या महामारी शुरू होने के बाद से किसी एक सप्ताह में सबसे ज्यादा थी। इस बीच संगठन ने आगाह किया है कि कोविड 19 वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाए जाने के साथ साथ टीके लगाए जाने के लिए जरूरी सिरिंज की सुलभता भी बढ़ाई जानी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम गेब्रियसस ने शुक्रवार को जिनेवा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना वायरस न केवल ऐसे पूर्वी यूरोपीय देशों में अपना सिर फिर उठा रहा है जहां वैक्सीन टीकाकरण की दर कम रही है, बल्कि पश्चिमी यूरोप के कुछ ऐसे देशों में भी बढ़ रहा है जहां वैक्सीन टीकाकरण की दर विश्व में सबसे ज्यादा रही है। उन्होंने कहा,
इट्स अनदर रिमाइंडर As we have said again and again, that vaccines do not replace the need for other precautions. Vaccines reduce the risk of hospitalization, severe disease and death.
डॉक्टर टेड्रोस कह रहे थे कि ये एक और अनुस्मरण है और जैसा कि हम बार बार कहते रहे हैं कि केवल वैक्सीन का टीका लगवाना ही अन्य एहतियाती उपायों की जगह नहीं ले सकता। वैक्सीन का टीका लगवाने से अस्पताल पहुंचने, इस बीमारी के गंभीर होने और इससे मृत्यु होने का जोखिम कम होता है, मगर उनसे संक्रमण फैलाव पूरी तरह रुकता नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोगों को कोविड 19 की वैक्सीन का बूस्टर यानी तीसरी खुराक देने या फिर बच्चों का टीकाकरण करने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि दुनिया भर में स्वास्थ्य कर्मी, बुजुर्ग जन और उच्च जोखिम वाले समूहों में शामिल लोग अभी पहला टीका लगने का भी इंतजार कर रहे हैं। इस बीच WHO ने अगले वर्ष नियमित टीकाकरण अभियानों के लिए सिरिंज की वैश्विक स्तर पर किल्लत होने की आशंका जताई है। स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को बताया कि उत्पादन के अभाव में अगले वर्ष कम से कम 1 अरब सिरिंज की कमी हो सकती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा है कि खोज किए जाने की एक शताब्दी बाद भी इंसुलिन दुनिया भर में डायबिटीज के साथ जीवन जीने वाले बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर है। ये रिपोर्ट इंसुलिन की खोज की एक सदी पूरी होने के अवसर पर प्रकाशित की गई है। कुछ और विवरण के साथ प्रतिष्ठा जैन।
रिपोर्ट में ऐसी प्रमुख बाधाओं का विवरण दिया गया है जो इस जीवन रक्षक औषधि की उपलब्धता के रास्ते में आड़े आ रही है। इनमें प्रमुख है उच्च कीमतें, मानव इंसुलिन की कम उपलब्धता, एक ऐसा बाजार जिस पर केवल कुछ ही उत्पादकों का दबदबा है और कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। इंसुलिन को डायबिटीज के इलाज में अहम बुनियाद माना जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन देशों व इस औषधि के निर्माताओं के साथ मिलकर इस लक्ष्य के लिए काम कर रहा है कि इंसुलिन की उपलब्धता हर उस व्यक्ति के लिए आसान हो जिसे इसकी जरूरत है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहेनॉम गेब्रियसस ने कहा है कि जिन वैज्ञानिकों ने 100 वर्ष पहले इंसुलिन का आविष्कार किया था, उन्होंने अपने लिए इससे कोई मुनाफा कमाना मंजूर नहीं किया और इसका बौद्धिक संपदा अधिकार केवल एक डॉक्टर में बेच दिया था। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि दुर्भाग्य से वो एकजुटता की भावना बहुअरबीय डॉलर के कारोबार में दबकर रह गई है, जिसने इंसुलिन की उपलब्धता के क्षेत्र में बहुत बड़ी खाई उत्पन्न कर दी है। डायबिटीज को एक ऐसी बीमारी कहा जाता है जो रक्त में शर्करा यानी शुगर के बड़े स्तरों के कारण होती है और दीर्घकाल में ये अवस्था हृदय, रक्त धमनियों, आँखों, गुर्दों और तंत्रिकाओं को गंभीर नुकसान पहुँचा सकती है।
और चलते चलते आपको बताते चलें कि इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ संयुक्त राष्ट्र महिला पुलिस अधिकारी का पुरस्कार नेपाल की अधीक्षक संज्ञा मल्ला को दिया गया है। संज्ञा मल्ला को यह पुरस्कार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में असाधारण काम करने के लिए दिया गया है। संज्ञा मल्ला मूलतः एक चिकित्सा पेशेवर हैं और उन्होंने UN शांति रक्षा व स्थिरता मिशन में एक ऐसी इकाई स्थापित करने में मदद की है जो UN के पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कार्यक्रमों की बेहतरी से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। संज्ञा मल्ला का योगदान खासतौर से कोविड-19 महामारी के दौरान और अतीत के इबोला संक्रमण फैलाव के समय में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।